स्त्री व्रत जन बहनों भाइयों बालक बालिकाओं और संघ सदस्य आप सबको आज 12 अगस्त 2020 का सॉरी 12 सितंबर 2020 का दिन शुभ हो। आप अपने जन्म उद्देश्य भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हूँ। आज मैं आपको चतुर्दशोध्याय 14वां अध्याय का पारायण करूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोध्याय 14वां अध्याय। श्री भगवान उवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान उत्ततम यज्ञात्वा सर्वे अराम सिद्धि मितो गता। श्री भगवान बोले संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। व्याख्या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। ये ज्ञान कौन सा? ये शरीर क्षेत्र है और इसके भीतर रहने वाली आत्मा क्षेत्रज्ञ है, मालिक है, क्षेत्र प्रकृति से संबंधित है और क्षेत्रज्ञ परमात्मा से संबंधित है, एक ही है। क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा एक ही है। ये ज्ञान परमात्म तत्व की प्राप्ति का निश्चित उपाय है, इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब साधक परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने पर क्रिया विषम तथा पदार्थ पराशय का अत्यंत अभाव हो जाता है। जब मनुष्य मुक्त हो जाता है कोई क्या करेगा, कोई काम नहीं करेगा और पराशय हो जाएगा, मतलब कुछ अपने उसको कुछ नहीं होगा और एक चिन्ह सत्ता के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं जो वास्तव में, और वो चिन्ह में हो जाएगा। जैसे परमात्मा चिन्ह में है ऐसे ही व्यक्ति भी चिन्ह में हो जाता है जब व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान भली भांति समझ लेता है, मान लेता है, जान लेता है। श्लोक 2 इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधन में मांगता सर्वे अपनी लोक जायन्ते पले नाम मृथ्यम पीछे। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सर्वधर्मता को प्राप्त हो गए हैं वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। गहन शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है। अब कारण शरीर का आपको बताया था कुछ है कि 3 स्थूल सूक्ष्म और कारण। अब यहाँ कारण शरीर से संबंधित वार्ता चल रही है। कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प स्थिति तो सा विकल्प में बदल सकती है पर निर्विकल्प बोध स्वकल्प में कभी नहीं बदलता। तात्पर्य है कि निर्विकल्प स्थिति में तो परिवर्तन होता है पर निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता। मतलब जब मनुष्य ये जान लेते क्षेत्र क्षेत्र विभाग का तो जो हमारा कारण शरीर है जिसमें संस्कार की पोटली है वो जब निर्विकल्प बोध में होता है तो फिर क्या होगा कि महासर्ग, महासर्ग मतलब उत्पत्ति जब होती है प्रलय के बाद और महाप्रलय जब विनाश होता है, हमारी आत्मा वैसे की वैसी रहती है जैसे भगवान रहते हैं। महासर्ग और महाप्रलय प्रति ही होते हैं, है ना, कुदरत में होते हैं, कभी बनता है और कभी बिगड़ता है, ये कुदरत है। भगवान ना बनते हैं ना बिगड़ते हैं। व्यक्ति से अतीत तत्व परमात्मा की प्राप्ति होने पर जब हम परमात्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं तो फिर महासर्ग और महाप्रलय का क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि हमारा संबंध उसमें, ज्ञानी का संबंध उसमें भगवान से जुड़ जाता है। और अगर हम इस कुदरत से अपने को विच्छेद कर लें, अलग कर दें, तो हम अपने में एक पहले ला सकते हैं। तात्पर्य है कि प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। प्रकृति का क्या कार्य है? ये हमारा शरीर, बताया ना पीछे क्या है, पांच तत्व, फाइव एलिमेंट्स, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, मन, पांच इनके बीच है 15, और मन बुद्धि चित्त इनका है ना, और पांच शब्द स्पर्श रूप वासना पांच तत्व, तो ये 24 बन जाती है, और 24 हुआ ये शरीर है। लेकिन इसमें जब आत्मा आती है, परमात्मा आते हैं, तो ये चलता फिरता मनुष्य बन जाते हैं। अगर हम जो प्रकृति ने बनाया, कुदरत ने बनाया 24 तत्व पाला ये पुतला, उसको पकड़ के बैठे रहेंगे तो क्या होंगे हम, हमारा जन्म भी होगा, मरेंगे भी और जन्म भी लेंगे। लेकिन अगर हमारी आत्मा इस 24 तत्व वाले शरीर से अपना संबंध विच्छेद कर ले, अलग हो जाए, तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, निरपेक्ष हो जाते हैं, सदा के लिए जन्म मन से छूट जाते हैं, परमात्मा की सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? परमात्मा सत्य का आनंद रूप है, ऐसे ही वह ज्ञानी महापुरुष सत्य आनंद रूप हो जाता है, जिसने कि अपने को शरीर नहीं माना, आत्मा ही माना है, और गुदवत से हम विच्छेद कर लिया है। श्लोक 3, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्वं ददामहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है, और मैं उसमें जीव रूप गर्व का स्थापन करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ व्याख्या किस चीज की आई, हम कैसे पैदा होते हैं? संपूर्ण प्राणी 80 लाख योनियां जो है, तो 80 लाख योनियों की उत्पत्ति कैसे होती है? भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुनिए, ऐसा है मेरी जो मूल प्रकृति है वो उत्पत्ति स्थान है, और मैं उसमें क्या करता हूँ, जीव रूप गर्भ डाल देता हूँ। उत्पत्ति जड़ है, लेकिन उसमें मैं चेतन सत्ता डाल देता हूँ, और उसी से जितने भी हम देखते हैं 80 लाख योनियां उत्पन्न होती है। जीव जब तक मुक्त नहीं होता, तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है, और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है। स्थूल तो जला देते हैं, और सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार में भी लीन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन महाप्रलय में क्या होता है, कारण शरीर सहित प्रकृति में लीन होता है। कारण शरीर को अगर नहीं तोड़ा तो क्या होगा, हम भी उस महाप्रलय में कुदरत में ही लीन हो जाएंगे, और जब महाप्रलय हटेंगे तो हम फिर से पुनः पैदा होंगे, फिर दोबारा स्वयं स्थापित हो जाएगा। हमें तो कारण शरीर को भी मिटाना होगा, संस्कारों को भी, मतलब बिल्कुल मुक्त हो जाना होगा। श्लोक 4, सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्त्या संभवन्तिया तासां ब्रह्म महद्भो वहां बीज प्रदाता। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में, योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। भगवान ने कितने आसानी से हमको समझा दिया कि मैं क्या हूँ, मैं पिता हूँ, और ये जो कुदरत है, जो मूल है, जो आदि है, अनादि है, वो माता है। व्याख्या 84 लाख योनियां देवता पितर गंधर्व भूत प्रेत पिशाच स्थावर जंगम जलचर थलचर नभचर जलायु अंदर उद्भिज स्वेदर जादे, संपूर्ण योनियों के जितने भी मूर्त अमूर्त व्यक्त अव्यक्त शरीर हैं, उन सब में भगवान अपने चेतन अंश रूप को बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक मानी में स्थित परमात्मा कंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व विद्यमान है, ये आ गई यूनिटी कि हम सब एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम। कैसे? ये भगवान ने अपना जो चेतन अंश है वो कुदरत में स्थापित किया, मूल प्रकृति में, अनादि प्रकृति में, और अनादि प्रकृति से सारे जीव ऐसी लाखों में पैदा होती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम सब में एक ही परमात्म तत्व है, अलग अलग नहीं है। ऐसे लगता है कि हम अलग अलग हैं, से कोई नाम से, कोई बुद्धि से, हम अलग अलग हमने अपनी उपाधियां बना ली हैं, लेकिन हम अलग अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। श्लोक 5, सत्तम रजस्तम इति गुण प्रत्यय संभव निबद्धन्ति महाबाहो देहि देहिन अव्ययम्। हे महाबाहो, प्रत्येक उत्पन्न होने वाले सत्व रजोतम, ये तीनों गुण अविनाशी दे जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। ये भगवान बताते हैं गुणों के विषय में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व रजोतम ये कहाँ से पैदा हुए? मूल प्रकृति से ही आए, और यही तीन गुण है जो हमें देह से बांधते हैं। हम तो मुक्त है, जीवात्मा है, भगवान के अंश है। नमे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, सनातन अंश है भगवान के, लेकिन लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम तीन गुणों से बंध गए हैं। सत्वगुण एक ऐसी हथकड़ी है जो सोने से, सोने की है, स्वर्ण है, यही है। और रजोगुण जो है ये चांदी की हथकड़ी है, और तमोगुण जो है लोहे की हथकड़ी है। लेकिन तीनों ही हथकड़ियां जो हमें बांध के ले जाती है। प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सत्व रजोगुण में तीनों गुण प्रकृति में भाग नहीं है, परंतु प्रकृति के कारण शरीर से अपना स्वर्ण मान लेने के कारण गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध लेते हैं। जब हम शरीर से अपना स्वर्ण जोड़ते हैं तो क्या होता है कि हम चेतन को, अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर से बांध, अर्थात मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा अभिमान उत्पन्न कर देते हैं। कौन? ये तीन गुण। तात्पर्य है कि सभी विकार प्रकृति के स्वरूप से उत्पन्न होते हैं, इनमें सत्ता मात्र स्वरूप में कोई भी विकार नहीं है। मतलब इनमें परमात्मा में कोई भी विकार नहीं है, लेकिन प्रकृति से हम जुड़ जाते हैं, इसलिए हमें अपने में कई विकार दिखते हैं, पैदा होते हैं। दार्शनिक उपनिषद में कहा गया है, असंगो अहम पुरुष, मैं तो असंग हूँ। और साथ ही कहा गया, विकारों के कारण ही जन्म मरण होता है। अगर हम इनसे ना बने, इन गुणों से, तो ना मरेंगे ना हमारा जन्म होगा। वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते, ये तो जीव ही उनका असंग करके बंध जाता है। देखो सीक्रेट बताते हैं भगवान, गुण जबरदस्ती आके नहीं मुँह पकड़ते हैं, सिपाही की तरह बांधा और ले गए, कम से कम इनमें बंध जाते हैं। कैसे बंध जाते हैं? अगर गुण बांधने वाले होते तो गुणों के व्यक्ति कोई उनसे छूट सकते ही नहीं, जीवन मुक्त हो ही नहीं सकता। गुण नहीं बांधते, गुण तो अपने आप गुण ही गुणों में बढ़ते हैं संख्या योग, लेकिन हम बंध जाते हैं। हमें कहीं अच्छा दिखाई देता है, कहीं अशुभ, कहीं शुभ, कहीं पैसे का घाटा, कहीं पैसे का लाभ, कहीं सुख की आसक्ति, कहीं ज्ञान से की आसक्ति, है ना, कोई ना कोई आसक्ति। आसक्ति मतलब है बंधन, अटैचमेंट। तो वो कैसे होती है? क्योंकि सत्वगुण में हमें सुख की से बंधते हैं, रजोगुण में हम कर्म योग से बंधते हैं, मतलब कर्म से बंधते हैं, और इसमें जो दूसरा है तमोगुण, इसमें हमें आलस्य प्रमाद से बन जाते हैं। व्याख्या है, गुणातीत होने के समीप होने के कारण सत्वगुण को नामय निर्विकार कहा गया है, परंतु सुख ज्ञान के संग के कारण निर्विकारी हो गया है। तो सत्वगुण बहुत अच्छा है, भगवान की ओर ले जाता है, लेकिन हम बंद हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सुख बड़ा अच्छा है, ये ज्ञान बहुत अच्छा है, क्योंकि संग रजोगुण का स्वरूप है। सुख और ज्ञान बाधक नहीं है, प्रति तुमका संग बाधक है। उनको संग है, उनको अपना मान लेना। वास्तव में सत्वगुण अपना है ही नहीं, मतलब सत्वगुण तो हमारा नहीं है, तो कुदरत का है। कुदरत हमने जन्म लिया, लेकिन ये हमारा है नहीं। अतः जब तक संग रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती। जब तक हम किसी के साथ बंधे हैं, चाहे सत्वगुण से चाहे रजोगुण से, तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हमें वैसे तो कहते हैं कि तन से रजो की ओर जाओ और रज से सत्वगुण की ओर जाओ, फिर तीनों गुणों को छोड़कर भगवान के पास जाओ। सात्विक ज्ञान में तो मैं ज्ञानी हूँ, ये संग रहता है। सात्विक लोग क्या बोलते हैं, समझते हैं बिन छोड़ देना उनको कि मैं ज्ञानी हूँ। स्वतत्व ज्ञान स्वार्थ असंग है, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर मैं ज्ञानी हूँ ये संग नहीं रहता। जो असली निर्विकार और गुणों से नहीं बनता, उसको ये भान भी नहीं होता कि मैं ज्ञानी हूँ। सात्विक ज्ञान में दृष्टा रहता है और अपने में विशेषता का भान होता है। क्या होता है कि मैं एक विशेष हूँ, देखो मुझे ज्ञान है। परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं रहता और अपने में कोई कमी भी नहीं रहती। जब हमें तत्व ज्ञान हो जाता है तो हमें ये सब नहीं रहता हमारे में, और हम अपने आप को विशेष भी नहीं समझते हैं। तब हम भगवान से मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। श्लोक 7 रजो रागात्मक विद्धि कृष्ण संग समुद भवम तन संतांति कौन्तेया कर्म संगेन देहीनम। हे कुंती नंदन, तृष्णा और शक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों के शक्ति से जीवात्मा को बांधता है। रजोगुण जो है ये मनुष्य को कभी हलचल में लगाता है, कामों में लगाता है, कार्य में लगाता है, तो संबंध रखते हैं। रजोगुण राग स्वरूप है, किसी वस्तु के पियाने में जो प्रियता पैदा होती है वो प्रियता ही रजोगुण है। रजोगुण कर्मों के संग से मनुष्य को बांधता है तथा सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं। यदि संग ना हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होते, इसलिए कर्म योग से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मों का और फलों का संग न होने से कर्म योग ही मुक्ति का कारण बनता है। उसमें निष्काम सेवा भी ना श्लोक 8 समस्त ज्ञान जम विद्धि मोह नम सर्वदेही नाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन निधनाति भारत। हे भगवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। तमोगुण मनुष्य को जब अज्ञान होता है तो पैदा होता है, तब प्रमाद लाता है, आलस्य लाता है, निंद्रा लाता है और देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। जो सत्य में देह हूं को बांध देता है। सत्वगुण और रजोगुण तो संग से बांधते हैं, तमोगुण स्वरूप से बांधने वाला है। ये तीनों गुण प्रति के कार्य है। जीव से प्रति उसके कार्य गुणों से स्वस्थ रहता है, परंतु गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण से गुणातीत होते हुए भी गुणों से बंध जाता है। परमात्मा गुणातीत कहलाते हैं और हम उनके अंश है, इसलिए हम भी गुणातीत है। जो अंश में गुण होते हैं वही अंशी में होते हैं, जो अंशी में होंगे वही अंशी में आएंगे। इसलिए हम भी स्वतंत्र है, बंधे नहीं है। पर हमने जब गुणों के साथ अपना संबंध जोड़ लिया तो हम बंध जाते हैं। श्लोक 9 सप्तम सुखे संजयती रजा कर्मणि भारत ज्ञानम अवित्य तू तमा प्रमादे संजय। ये भक्त वैश्व अर्जुन सप्त गुण सुख में रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। सप्तगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, ये तो सुख का संग होने पर विजय करता है। संग जब हम अपने को से जोड़ लेते हैं ना, तब सतोगुण हमारे पर हावी हो जाता है और हम भगवान से दूर हो जाते हैं और अपनी प्रशंसा करते फिरते हैं, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा सात्विक, मैं बड़ा विचारशील, इस तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय करता है, परंतु तमोगुण स्वरूप से ही विजय करता है, इसलिए तमोगुण में संग शब्द नहीं आया। तमोगुण में किसी का संग नहीं है, वो आप स्वरूप से ही आप स्वरूप ऐसा तमोगुण का मनुष्य के ऊपर विजय पा लेता है। श्लोक 10। रजस तमस चाभी भूया सत्वम भवति भारत, रजा सत्व तमश्चैव तमा सत्वम तथा। श्री भरत गणेश अर्जुन, रजगुण तमोगुण को दबाकर सत्व गुण बढ़ता है, ये बस अच्छी बात अपने समझनी चाहिए। बड़े इच्छुका से रजोगुण और तमोगुण को पीछे हटा देना चाहिए, फिर हमारे में सत्वगुण आ जाता है। सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, इसलिए हमको सत्वगुण और तमोगुण को नहीं दबाना चाहिए। वैसे सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, ये एक दूसरे पर हावी होते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, होने देना चाहिए। हमें अपने को सात्विक सत्वगुण में ही प्रतिष्ठित रखना चाहिए और धीरे धीरे सत्वगुण के संग से भी अपने को मुक्त करते हुए भगवान की ओर जाना चाहिए। व्याख्या है, दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है, बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय पाता है और विजय करके मनुष्य को बांध देता है। जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है, दूसरे गुणों की गुणता हो जाती है, गुणों का स्वभाव है। अब मैं आपको आगे श्री महाराज जी की श्री रामलाल सूद जी के द्वारा लिखी पुस्तक का अध्ययन करवाती हूँ। कल हमने श्री महाराज जी की पुस्तक में पढ़ा था कुंडलनी योग, कुंडलनी कैसे जागृत होती है और कौन कौन से सात चक्कर है, कैसे कैसे हम उन चक्रों से विजय पा करके मुक्त हो सकते हैं, ये सब हमको ज्ञान मिल गया है। अब मैं इससे आगे थोड़ा सा पढ़ूंगी। आज रामलाल जी लिखते हैं, स्वामी जी के पास बैठे हैं और वार्ता हुई उनकी आपस में, और रामलाल जी कहते हैं कि कभी कभी स्वामी जी भगवान कृष्ण की भांति मूड में होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, एक के बाद एक के बाद एक चैप्टर खोलते ज्ञान का एक एक चैप्टर एक एक अध्याय खोलते चले जाते हैं और उसके सूत्र बताते जाते हैं, ऐसे ही स्वामी जी ने भी मुझे मिरेकल्स के बारे में या ध्यान के विषय में और विल पावर के विषय में बहुत कुछ बताया, और बताया कि भगवान ने हम सबको बहुत ब्लेस्ड किया है विल पावर, और हमें मन भी दिया है, माइंड मस्तिष्क में दिया, दैट इज ऑल पावर पावरफुल। आगे है, इफ वी नो हाउ टू बी ट्रैक्ट अवर माइंड फ्रॉम द फाइव सेंसेस एंड कंसेंट्रेट इट ऑन गॉड रियलाइजेशन वी कैन एंटर द रियलम ऑफ मेडिटेशन। अब कहते हैं कि मेडिटेशन ध्यान में हम कैसे जाए, तो स्वामी जी ने रामलाल जी के जो बताया तो रामलाल जी लिखते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि हम अपने हाउ टू डिट्रैक्ट अवर माइंड, हम अपने माइंड को मस्तिष्क को फाइव सेंसेस शब्द स्पर्श रूप रस गंध से अलग कर दे एंड कंसंट्रेटेड ऑन गॉड, और उस मस्तिष्क को या मन को जिसमें लगा दें भगवान में कंसंट्रेट करें, ध्यान करें। पांच सेंसेस कौन कौन से मैंने आपको बताई, शब्द किसी का सुने ना, स्पर्श किसी को छुए ना, कान से हम शब्द सुनते हैं, त्वचा से छूते हैं, आंखों से देखते हैं, हम कोई ऐसी वैसी चीज ना देखे भगवान को ही देखे, नाक से हम सूंघते हैं, गांव सुगंधी और दुगंधी का पता लगाते हैं और वाणी से हम बोलते हैं, जीवा से हम स्वाद का रस लेते हैं, यहाँ जीवा आएगी वाणी नहीं आएगी, क्योंकि ये फाइव सेंसेस है, ये पांच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अगर हम इनको पांचों को दुनिया से अलग करके भगवान में लगाए, हम भगवान को देखें, भगवान की बातें सुने, भगवान की बातें, भगवान के नाते हम सब के साथ संबंध जोड़े, तो हम अच्छी मेडिटेशन कर सकते हैं। स्वामी जी गेव मी इम्पोर्टेंट हिंट्स फॉर मेडिटेशन विच नीड टू बी मेंशन्ड हियर। They can be built only to the capable devotees who have the understanding, the background and knowledge of yoga. Secrets not mere declarations. He told me that after the practice of meditation for sufficient time, you will be able to visualize your Ishtadeva on the lotus of your heart. अच्छा, हम आगे चलते हैं। Then you increase your meditation, जब आप अपने ध्यान को बढ़ाते हैं और make it intensive ध्यान करते हैं इसको गहरा and extensive व्यापक बनाते हैं, तब हम अपने इष्टदेव से ध्यान में बात भी कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। I continued meditation for many months and made some progress as Swami Ji had indicated. Bandri, I again met Swamiji and asked, why and how the meditation becomes more powerful? Swamiji laughed and he virtually unveiled the law of miracles. He told me, in deep meditation, we are full communion with the Almighty and therefore we are one with God. क्या कहा कि जब ध्यान में हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं, there is no difference between the individual self and the cosmic self. No difference means between Jiva and Brahm. As so as to say that there is no difference between individual soul and universal soul. Individual consciousness and the universal consciousness become one and the same thing. It bounds up. जो ये सेंटेंसेस है ये सब यही बता रहे हैं कि जब हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं तो जीव और ब्रह्म कह लो, आत्मा और परमात्मा कह लो, व्यक्तिगत आत्मा और यूनिवर्सल आत्मा कह लो, मतलब सब एक हो जाते हैं। उसमें क्या होता था, व्हील ऑफ माया इज लिफ्टेड, माया का पर्दा उठ जाता है। और ये जो मेटेरियल थिंग्स है ये सब, इनका जो बंधन है हमारे ऊपर, वो भी खत्म हो जाता है। और हम दो समझते हैं, मैं अलग है भगवान अलग है, ये भी खत्म हो जाता है। तब कहा जाता है ओनली वन वास्ट, वास्ट मतलब बहुत बड़ा, अनलिमिटेड अनंत एंड इनफिनिट, जो कभी खत्म नहीं होता। All prevailing consciousness, ऐसी consciousness, ऐसी चेतना जो कि vast है, unlimited है, infinite है, ऐसी चेतना है। In that state of existence, you become the creator. उसमें क्या होता कि आप भी भगवान की तरह creator बन जाते हैं। Creator मतलब बनाने वाला। You have almost the same powers as the Almighty has. उसमें तुम्हारे पास उतनी शक्ति होती है जिसमें ये भगवान के पास है। Because the illusion, the maya, the avidya which makes us believe that we have separate existence from God. क्योंकि illusion, भ्रम, माया और अविद्या ये सब हमें भगवान के अस्तित्व से अलग करते हैं। इमेज नो भेर नो मोर इन मेडिटेशन, ध्यान में ये सब कुछ नहीं रहता है, न माया रहती, न भ्रम रहता, न विद्या रहती। इमेज नो भेर नो मोर इन मेडिटेशन, ही एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल ऑफ अ पिक्चर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। स्वामी जी ने बड़े अच्छे ढंग से मुझे एक घड़े, मिट्टी का जो घड़ा होता है, उसका एग्जाम्पल दे करके समझाया। दैट इज टू से द स्पेस इज अ पिक्चर एंड द यूनिवर्सल स्पेस आर वन एंड द सेम थिंग। कैसे, ये घड़ा रख दो, उनका भर के रख दो, या वैसे रख दो, तो जो खाली जगह है घड़े में आती है और जो बाहर है आसमान वो एक ही है, लेकिन जब घड़ा रख लो तो दो हो जाती है ना। जैसे गंगा का पानी ले लो, गंगा जी का जल भर दिया घड़े में तो वो अलग जल हो गया, घड़े का जल हो गंगा जी का जल, ऐसे ही स्पेस की बात आती है। लेकिन लेकिन द स्पेस ऑफ द पिक्चर, घड़े का स्पेस और यूनिवर्सल स्पेस जो है वो एक ही है। द इंडिविजुअल द सेम थिंग द इंडिविजिबल, जो बांटा नहीं जा सकता। कहते हैं कि घड़े का स्पेस भी दो ही है और आसमान का खाली जगह का एक ही है सब, लेकिन उसको बांट नहीं सकते हम, ये घड़े का है और ये आसमान का है। There is no difference between the both. यहाँ पर इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। By the real of Maya, they appear to be separate. ये माया का पद है जिसे हमें अलग अलग दिखाई देता है। It is our illusion that they are separate. ये हमारा भ्रम है कि ये स्पेस अलग अलग है। Those for the space within the picture becomes conscious and get the power of thinking, it will certainly think that it has its own separate entity due to being covered by the picture. कल्पना कर लो, पिक्चर मतलब घड़े को भी चेतना हो, जागृति हो और सोचने की शक्ति हो, तो ये सोचेगा इसका भी अपना एक अलग आइडेंटिटी है, अपने आप में सत्ता है, क्योंकि वो घड़े से ढका हुआ है। एंड इट विल नेचुरली बी अफेयर ऑफ लूजिंग दिस सेपरेट आइडेंटिटी, और उसको डर भी लगता है कि मैं कहीं टूट गया तो मेरा अलग सा वो अस्तित्व जो वो खत्म हो जाएगा। अगर ना जाने कैसे करके वो घड़ा टूट गया, द स्पेस विदिन द पिक्चर वुड थिंक दैट इट हैज़ लिमिटेशन ऑफ टाइम। स्पेस जो है विदिन द घड़े के बीच में क्या सोचेगा, इट हैज़ अ लिमिटेशन ऑफ टाइम, ये टाइम क्या पाबंदी है। ऐसे ही ह्यूमन सोल की बात है जो हमारे शरीर के भीतर रहता है, आत्मा व्यक्तिगत आत्मा शरीर के भीतर रहता है, उस तरह की सर्टन लिमिटेशन का पता लगता है कि हमारे पास में कुछ लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, डोज ऑफ बॉडी शरीर की, टाइम की और उम्र की। इनफैक्ट देर आर नो लिमिटेशन, द ओनली लिमिट for the space within the picture is the picture itself, and as soon as the picture is broken, असली में देखा जाए तो कोई है ही नहीं, एक ही चीज है। जब पिक्चर टूट जाता है, as the picture is broken, the space within the picture becomes infinite. तो वो घड़े का जो स्पेस है वो इनफिनिट हो जाता है, उसके साथ ही मिल जाता है। In the same way, the only limitation for the human soul, ऐसे ही पुरुष की आत्मा का भी एक limitation is the ego, that I am the body. क्यों हम सोचने लग पड़ते हैं, ईगो आ जाता है हमको कि मैं शरीर हूँ, लंबा हूँ, ऊंचा हूँ, गोरा हूँ, क्या कैसा भी है, जैसे जैसा हम होते हैं हम उसको समझने लगते वैसा ही। That I am the body. The hankara of being a separate entity from the universal existence. So, hankara rehta to hum universal jo char bhoumik astitya usse apne ko alag samajhte hain. As soon as a person sheds off ego of being a separate body, jaise hi hum is hankara ko utha karke phenk dete hain, to hame किस अंकार को कि मैं सेपरेट हूँ, शरीर में अलग से हूँ, ऑल लिमिटेशन ऑफ जीवा आर गोन, तो इसलिए तब क्या होता है, जीवात्मा की सभी लिमिटेशन जो है वो खत्म हो जाती है। ऑल द बोन्स ऑफ मैटर आर ब्रोकन, वो सारे बंधन भी टूट जाते हैं। As soon as we understand and realize that we are not the body, जब हमें सत्संग में ये ज्ञान मिलता है कि हम शरीर नहीं है, but we are the souls, पर हम आत्मा हैं, एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। हम ये शरीर नहीं है परंतु दुनिया यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है उसी के पार्ट एंड पार्सल हिस्से हैं, विच इज ऑल पावरफुल, जो की पूर्ण शक्तिमान है, ऑल प्रिवेलिंग, ओमनीसेंट एंड ओमनीपोटेंट। कौन सी चेतना जो कि सब जगह फैली हुई है और जो सर्वज्ञ है, ओमनी सहित सर्वज्ञ है, ओमनीपोटेंट जो सब शक्तिमान है, सेल्फ रियलाइजेशन, तो उसमें हमें आत्मानुभूति होती है। सेल्फ रियलाइजेशन कम्स टू अस, वी रियलाइज द रियल सेल्फ, तब हम अपने आप को तो अनुभव करते हैं कि हम तो सचमुच क्या है, रियल सेल्फ, दैट वी आर एट विद द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो हमें अनुभूति होती है कि जो दैवी जो भगवती चेतना है उसके ही अंश है, हम वो ही है, कुछ रियल सेल्फ नहीं है। He who realizes the truth through meditation becomes a seer. जो ध्यान के द्वारा इसको अनुभव करता है truth को, सच्चाई को, कि हम भगवान के अंश है, हम भगवान से अलग नहीं है, वो एक ऋषि बन जाते हैं, become a seer, a Buddha, an enlightened person, एक बुद्ध बन जाते हैं, एनलाइटेड पर्सन बन जाते हैं, ज्ञानी, मुक्त ज्ञानी, जीवन मुक्ता बन जाते हैं, एंड गेट सल्वेशन जॉइन द सेम, और हमें मुक्त सल्वेशन प्राप्त करते हैं, मुक्ति मिलती है, और हमारे पास वही पावर्स आ जाती हैं जो कि भगवान के पास होती हैं, जो भगवान एंजॉय करता है, जो भगवान के पास होती हैं। Meditation is the shortest way, the royal highway to achieve the self-realization. बड़ा इस पर सक्सेस देते हुए रामबाग जी लिखते हैं कि मेडिटेशन जो है वो शॉर्टेस्ट, बड़ा छोटा सा रॉयल हाईवे, सीधा रास्ता है अपनी आत्मा को अनुभूत करने का। Swami ji told me to continue meditation and not to learn after miracles. Swami ji ne kaha, hey Ramlal, hey Ramlal, dhyan ko continue karo aur chamatkaron ke piche mat bhago. If you have the powers of meditation, the power of miracles will follow in its natural way. Agar aapke paas dhyan ki shaktiyan aa jayengi, वो चमत्कार जो है अपने आप नेचुरल स्वाभाविक रूप में आपके पीछे आ जाएंगे। आई हैड रेड समवेयर दैट नॉलेज इज पावर, मैंने कहीं पढ़ा था कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन नो आई अंडरस्टैंड दैट नॉलेज कम्बाइंड विद मेडिटेशन इज पावर। अब मैं समझ गया कि ज्ञान तब शक्तिशाली होता है विद मेडिटेशन, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर को संपूर्ण किया कि ध्यान क्या होता है, ध्यान से कैसे शक्तियाँ आती हैं, और इन सेंस हम देखते हैं कि मिरेकल जो है वो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपने आप आते हैं मनुष्य के पास, जब मनुष्य भगवान के साथ एक हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे, द महान निर्वाण ऑफ स्वामी जी, The eternal farewell and reappearance. स्वामी जी दूसरी बार आए, पहली बार आए उसी शरीर में, भक्तों से मिले, वो कथा मैं कल आपको सुनाऊंगी। जय माता दी, गीता माँ।